नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका फिर से स्वागत करती हूँ। एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ पपी खरीदने गया और वो सभी पपियों को वहां देख रहा था। बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे कुत्ते या डॉगी वहां पे थे। देखते देखते उसका ध्यान एक ऐसे पपी पे गया जो थोड़ा साइड में था। उसने देखा उसका पैर ठीक नहीं है, कुछ उसको लगा कि जैसे वो अपाहिज है थोड़ा। बार बार उसका ध्यान वहीं पे जा रहा था। दुकानदार से उसने फिर से उसी के बारे में पूछा। दुकानदार ने कहा, बाकी पपियों को देखो, वो जो पपी है वो इतना ठीक नहीं है, लेकिन वो उसी के बारे में पूछ रहा था। जब दुकानदार ने कहा उसकी कीमत भी कम है, आप दूसरे पपी को देखो, आप उस पपी को क्यों मांग रहे हैं, तो उसने अपना पैर दिखाया। वो बच्चा खुद भी अपाहिज था। ये जो भावना है दूसरों के प्रति, इतना एम्पति है अंदर, ये किस वजह से हो सकता है, इसका लेवल हमारा कैसे बढ़ सकता है, ये हम आज के सीक्रेट में देखेंगे। पिछले कड़ी से हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा कर रहे हैं कि हमारे भावनाओं को कैसे मॉडरेट रखना है, कैसे समय पर उसको एक्सप्रेस करना है। आज हर बार की तरह हमारे साथ डॉक्टर सचिन साथ में है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। नमस्ते।
ओम शांति।
जैसे मैंने ये स्टोरी बताई, इसमें हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ आता है, ये तो मैं समझ रही हूँ कि ना हम दूसरों की भावनाओं को भी समझ रहे हैं, अपने ऊपर से हम दूसरों का भी अंदाजा लगाते हैं।
बहुत सुंदर स्टोरी थी, बहुत टचिंग स्टोरी है ये। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में दो बातें देखी, एक अन्य आत्माओं के प्रति, इंट्रा एंड इंटरपर्सनल, दो चीजें, एक अवेयरनेस एंड स्किल्स। तो पिछले एपिसोड में अपने प्रति जागरूक और अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है देखा है। ये जो बात आती है कि दूसरों के प्रति इन रिलेशनशिप्स में आप कैसे एम्पथाइज करें, आपने एक शब्द जो इस्तेमाल किया जिसको कहते हैं एम्पथी।
जी।
और एम्पथी ये जो शब्द है इमोशनल इंटेलिजेंस में काफी आता है। पहले जो शब्द था, मुझे याद है कि जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तब बोलते थे कि सभी पैथी में सबसे इम्पोर्टेंट पैथी है सिंपथी।
जी।
सिंपथी और एम्पथी में बहुत ड्रास्टिक फर्क है। बहुत से लोग सिंपथाइज तो करते हैं पर एम्पथाइज करना हर एक के बस की बात नहीं होती है।
जी।
सिंपथी माना किसी को कोई तकलीफ होती है, दुख होता है, तो हम भी बोलते हैं अरे रे बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। माना वो सफर कर रहा है, आप भी सफर कर रहे हैं उसके साथ, दुख में आप बह रहे हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स टू अ सर्टन एक्सटेंट, लेकिन एम्पथी इसके आगे जाते है। सिंपथी में व्यक्ति कहता है कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, माना वो यहाँ रहता है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। एम्पथी में एक स्टेप अहेड होता है, वो बोलता है आई अंडरस्टैंड एंड आई फील ऑल्सो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड आई एम देयर टू एम्पावर यू।
वेरी ब्यूटीफुली।
माना सिंपथी यहाँ तक होती है, एम्पथी यहाँ से यहाँ तक आती है और उसके आगे एक स्टेप, दैट पर्सन इज देयर टू एम्पावर यू। आपको सिर्फ वहां छोड़ नहीं रहा, अरे रे बहुत बुरा हो, मैं आपको शक्तिशाली बना रहा हूँ। और मेरे ख्याल से जितने भी राजयोगी है, मेडिटेटर्स है, वो पूरे विश्व के लिए यही कर रहे हैं।
ओके।
दे डोंट हैव जस्ट सिंपथी, दे आर एम्पावरिंग एवरीवन। इवन ये सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी समस्याएं आप पढ़ रहे हैं या हमारे सामने जो ईमेल आ रहे हैं, हम उनके समस्याओं को केवल समझ नहीं रहे, इट इज नॉट एट द लेवल ऑफ हेड, इट इज एट द लेवल ऑफ हार्ट। हम फील कर रहे हैं और फिर हम सोल्यूशन दे रहे हैं, हम मेडिटेशन करा रहे हैं, तो साथ में क्या है, हमने उनके समस्या को समझा, फील किया और सोल्यूशन दिया ताकि वो खुद अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाए। सो दिस इज एम्पथी।
मतलब सिंपथी के साथ में हमको अगर एम्पथी हम ऐड करते हैं तो इट एम्पावर्स अदर।
एम्पावर करना बहुत जरूरी है। आज तक हम सब क्या कर रहे हैं, अरे रे बहुत बुरा हुआ, ठीक है आपकी समस्या आप समझो मैं जा रहा हूँ।
किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, हम जाते हैं, आजकल तो ये भी हो जाता है, हम भी बहुत बिजी है फिर भी जाना जरूरी है, दुखी है, लेकिन अब ये भी कस्टम हो गया है, ये सिस्टम है पूरे लाइफ का, हम जाते हैं वहां पे बैठते हैं आ जाते हैं। लेकिन वो फीलिंग जो आप कह रहे हैं ना, जो डीप हमको फील करना चाहिए, आई थिंक दिस इज द मोस्ट मिसिंग पार्ट एट द प्रेजेंट सिनेरियो।
क्या होते जा रहा है, हम एक देख रहे हैं कि हम 21st सेंचुरी का जो लाइफ है बहुत फास्ट लाइफ है
जी,
और चारों तरफ बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, तो लोग एक फास्ट जिंदगी जी रहे हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है, इंटरनेट एज है, एक क्लिक का बटन पे हमको सारी दुनिया अवेलेबल है, दुनिया में जो चाहिए वो आपको मिल सकता है, मोबाइल आ गए हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसे डिवाइस होगा जो हाथ में लेके आप सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं यहाँ से हजार, आप उसको देख भी सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। तो हमको ऐसे लगता है कि हमने दुनिया को जीत लिया, लेकिन एक इसके साथ में जो बैलेंस रखना चाहिए, लेकिन दिन भर वो कंप्यूटर है, मोबाइल है, टैब है या टीवी है, जिसके साथ हम बैठ के, कार है, इन सबके साथ में बैठते हो, कहीं हम तो मशीन नहीं बन रहे हैं।
एक्चुअली बन गए हैं।
तो मशीन और मनुष्य में ये फर्क है कि मशीन में इमोशंस नहीं होती है
जी।
लेकिन हम तो केवल मशीन नहीं ना, मशीन के साथ इमोशंस भी है। तो जो आप कह रहे हैं ये बात कहीं हद तक सच है कि लोग इमोशनली डिस्कनेक्ट है
जी।
और यहाँ पे राजयोग, हमारी बहने, हम देखते हैं आपने जो डेथ की बात कही, तो जब कोई डेथ होता है किसी परिवार में, बहुत बड़ा हादसा होता है, बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है, वहां पर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहने जाकर सिर्फ वहां पे उनको सिंपथाइज नहीं करते, परंतु उनको एम्पथाइज करती है। वहां पे मृत्यु प्रवचन चलता है कि वास्तविकता में हमको उस आत्मा को बहुत शक्ति देनी चाहिए, है ना। तो आत्मा कैसे आती है, क्या करती है, उसका रोल क्या है, ये सब बातें, और परमात्मा से कैसे हम शक्ति लेके उसको दे सकते हैं, ये सब रहस्य राजयोग में बताया गया। तो इवन डेथ जैसी सिचुएशन में भी हमने देखा कि अभी हमको हर जगह पे बुलाया जाता है और मृत्यु प्रवचन वो 7 दिन तक चलता है। तो उस समय हमने देखा कि जो माता है जिनका यंग बेटा चला गया या पति चला गया और बहुत बड़ा स्ट्रेस में है, लेकिन ये मृत्यु प्रवचन सुन के या राजयोग का अभ्यास करके वो स्टेबल होके उसमें से निकल रही है जल्दी
जी।
नहीं तो पूरा जिंदगी भर वो प्रेशर रहता है। लेकिन इस ज्ञान के वजह से कि आत्मा अविनाशी है, हर हर आत्मा का अपना पार्ट है, उसकी यात्रा थी, उसकी यात्रा पूरी हुई और अगले पड़ाव पर गया, ये सुनाया जाता है
जी।
तो ये एम्पावरिंग अदर्स है। तो एम्पथी इज अ साइंस ऑफ हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन एंड अ स्पिरिचुअल पर्सन बोथ। तो ये सोशल स्किल्स में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, एम्पथाइज करना दूसरों के साथ
जी। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने पूरा एम्पैथी को। अगर मैं डिक्शनरी में जाके शायद इसका मीनिंग देखूं तो वर्ड का मीनिंग मिल सकता है मुझे, लेकिन जिस भाव और भावना से आपने इसको बताया है, आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल।
देखो, सिंपथी में एस है और एम्पैथी में ई है। सिंपथी में एस माना वो सफर कर रहा है, आप भी सफर कर रहे हैं, इंग्लिश वाला सफरिंग, सफरिंग माना दुख का अनुभव। एम्पैथी में वो सफर कर रहा है लेकिन आप एम्पथी कर रहे, माना ई से आप उसको एम्पावर भी कर रहे हैं साथ में
जी,
उसको
जी।
फील करके ई फॉर एम्पावरमेंट। तो इस तरह से आप ध्यान में रखो तो आपको फर्क अच्छी तरह से महसूस होगा।
बहुत सुंदर। कई बार ये देखने में आता है, जैसे आपने कहा कि दूसरों की भावनाओं को फील करना है, हमें अंदर फील करना है, या कई बार सिंपथी ड्राइव भी होती है, हम ऊपर से दिखाते हैं, हम साइड में निकल जाते हैं, जैसे आपने पहले भी सुनाया। लेकिन एम्पैथी में जैसे फील करना, दिल से अंदर से वो टच होना चाहिए कि सामने वाले का दर्द क्या है, सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, लेकिन वो मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या वॉल तैयार कर सकती हूँ।
ये हमारे साथ बहुत होता है डॉक्टर्स प्रोफेशन में
जी।
और हमको इसका ट्रेनिंग दिया जाता है क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग आने वाले वो दुख दर्द में आने वाले है,
बीमारी।
अगर मैं हरेक साथ अगर फ्लो होने लगू, आई कैन नॉट ट्रीट देम। तो मैं स्टोन नहीं हूं, पर मेरे को डिटैच होते से साथ में लविंग भी होना चाहिए। तो मैं हर एक पेशेंट को, आप कल्पना करो मेरे पास 50 का ओपीडी है, तो 50 पेशेंट मेरे पास आए, हर एक दुख में उसकी हर एक की अपनी कहानी है
जी।
अगर हर एक की कहानी के साथ मैं अगर बहु सबसे बहता जाऊं, माना पहला पेशेंट आया उसके साथ मैं बहु, तो नेक्स्ट पेशेंट है उसके साथ मैं न्याय नहीं कर सकता। मेरे को इमीडिएटली फर्स्ट पेशेंट को भूल के सेकंड पेशेंट के ऊपर ध्यान रखना।
बट डोंट यू थिंक इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू फील एंड साइमल्टेनियसली यू हैव टू डिटैच?
डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ये कहूंगा। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस और हमारे ऊपर भी शुरुआत में इफेक्ट आता है। डॉक्टर्स भी एक इंसान है, नंबर वन। कई डॉक्टर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं इतने सफरिंग को। खास करके सफरिंग अगर आप कैंसर में देखो, जो क्रोनिक इलनेस होते हैं, खास करके बहुत सफरिंग होता है एंड में, क्योंकि दर्द इतना रहता है कैंसर का, सहन नहीं कर पाते ना वो, या बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप दर्द को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या सोचते हैं मासूम बच्चा है, उसको इतना दर्द के ऊपर उसको सहना है। वो छोटे 3 महीने का बच्चा है, 4 महीने का, उसको इंजेक्शन लग रहे हैं, उसको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, तो कई बार ना वो सहन नहीं कर पाते ना घर वाले और जो भी है वो लोग, क्योंकि वो दुख है। और कोई पेशेंट है कैंसर का, कैंसर के वार्ड में अगर आप देखो ना, वो सांस ले पा रहा है ना वो खा पा रहा है,
कई चीजों को देखना बहुत मुश्किल है।
तो ये सफरिंग है, इसका इफेक्ट मेडिकल फ्रेटर्निटी पे बहुत आता है, जो मेडिकल फील्ड में, फिर वो डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल हो। इसको हम कहते हैं कंपैशन फटिक, मतलब हम इतनी कंपैशन दिखाते हैं कि हम कंपैशन में, या इसको दूसरा शब्द भी दिया है बर्नआउट सिंड्रोम, उसमें हमारी पूरी एनर्जी चली जाती है और हम खुद डिप्लीटेड अनुभव करते हैं।
तो जो ये प्रोफेशन से रिलेटेड है उनके लिए तो खास राजयोग का बहुत इम्पोर्टेंस है।
इसी को हम प्रोफेशनल हजार्ड कहते हैं। हर एक व्यवसाय का अपना हजार्ड होता है, वैसे प्रोफेशनल हजार्ड है। आपने एग्जाम्पल दिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए हमको खास राजयोग मेडिटेशन करके हमको डिटैच एंड लविंग स्टेज में रहना है। मैं डिटैच हो रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी भावनाओं को फील नहीं कर रहा हूँ, मैं भावनाओं को फील भी कर रहा हूँ, उसको एम्पावर भी कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू डिटैच, क्योंकि फिर मैं अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर सकता। ये अटैच होना और फिर डिटैच होना, मतलब आपकी स्टोरी सुनना, उसको फील करना और आपको आश्वासन देना, आपको कॉन्फिडेंस देना, ये मैं कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम आप होने के बाद नेक्स्ट पेशेंट है
जी।
तो यहाँ से डिटैच होना और फिर नेक्स्ट पेशेंट की फिर से सुनना
जी।
इसके लिए आपकी बुद्धि बहुत शक्तिशाली चाहिए
जी।
आपका मन और बुद्धि बहुत स्थिर चाहिए। तो ये कला हमको डेवलप करना पड़ता है। कुछ लोगों को नेचुरली आती है, पर इतना जरूर है कि मेडिटेशन से, जितना हम मेडिटेशन करने लगते हैं तो हमारा मेडिटेशन परमात्मा के साथ है, जो सर्वशक्तिवान है, और उसकी विशेषता है कि वो ऐसा रहता है क्योंकि सब उसके बच्चे हैं
जी।
और वो ऊपर से देखता है कि मेरे बच्चों को ये सफरिंग है, तो वो फील करता है, ऐसे नहीं कि उसका दिल नहीं, वो फील करता है पर वो इंटरफियर नहीं करता है, वो शक्ति देता है जो शक्ति लेने के लिए तैयार है, और हम एम्पावर इतने हो जाते हैं उसकी शक्ति से कि वो शक्ति हम सबको दे सकते हैं
जी।
तो हमने देखा कि अगर मेरा प्रोफेशन, जैसे आई एम अ काउंसलर, तो मेरे पास बहुत ऐसे आते हैं जो दुखी है, और काउंसलिंग में हमको बहुत सुनना पड़ता है
जी।
तो सुनते सुनते हम देखते हैं कि कितना दुख है दुनिया में, जितना दुख देखते उतना उनको शक्ति भी मेरे को देना है, तो इतनी शक्ति पहले मेरे को अपने अंदर भरनी है, तभी मैं तो उनको देख सकता हूँ।
प्रोफेशन के हजार को पार करने के लिए आपको टाइम निकाल कर इसको प्रायोरिटी पर रखना ही पड़ेगा कि हमारे अंदर हम शक्ति कब भरे।
अभी आपने मेडिटेशन के लिए समय नहीं निकाला तो आपको डॉक्टर के लिए समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट तो आना ही है, जिस
चाहे कोई भी फील्ड का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन हर इंसान के लिए अब ये जैसे नीड बन गई है। और इसी से हम, मुझे याद आया, जैसे आपने स्पिरिचुअल क्वेश्चन है ना, हमने चर्चा की थी 3 कड़ियों पहले, कि किस तरह से IQ पहले आया, फिर EQ के बारे में बहुत चर्चा हुई, और अब SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। हम देखते हैं कि एक चैलेंज है यंग लोगों को स्पिरिचुअलिटी के लिए मोटिवेट करना, है ना। उनको पता है प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो लोग समझते हैं स्पिरिचुअल मतलब सब कुछ छोड़ना, या रिलीजियस प्रैक्टिस और स्पिरिचुअलिटी को वो एक समझते हैं। तो क्या हमारे व्यूवर्स के लिए आप यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, हम कैसे एक नॉर्मल लाइफ स्पिरिचुअलिटी से लीड कर सकते
मेरे
हैं।
पास एक बहन आई बहुत अच्छे घर की, रिच फैमिली, तो वो हमारा मेडिटेशन करने लगी, बट शी वॉज अनकम्फर्टेबल। तो कहते कि सब अच्छा लगता है मेरे को, जीना भी है, पर मैं जब दोस्तों के साथ रहती हूँ तो मैं बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस करते, क्योंकि दोस्त कुछ ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं उनके खाने पीने का, और मैं, मेरे को ये लाइफ अच्छा लगता है, पर मैं उनके साथ, मुझे उनका कंपनी भी चाहिए और ये लाइफ भी चाहिए, है ना। ये अवस्था में थी, मैंने कहा थोड़े समय के लिए आप भूल जाओ कि आप मेडिटेशन करते हैं, मेरे को इतना बताओ कि एक अच्छे व्यक्ति का क्या लक्षण होगा
जी।
क्या उसका किसी ड्रेस के साथ कनेक्शन है, माला के साथ कनेक्शन है, या बैच के साथ कनेक्शन है? बोला नहीं, वो अच्छा व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा, लाइट रहेगा, सबकी मदद करता रहेगा, है ना, और सब उससे खुश हो गए, वो मर्यादा में रहेगा। मैंने कहा बस रिमेम्बर दैट, डोंट रिमेम्बर, क्योंकि क्या होता है मेडिटेशन में आते है ना, तो ऐसे लगता है कि बहुत ऊंचा कहीं तो है, और हम जब इनके साथ रहते तो वी आर नॉट फुलफिलिंग, ना हम इधर के ना उधर के
जी, जी।
तो मैंने उसका टारगेट चेंज किया, मैंने कहा डोंट रिमेम्बर ऑल दोज हाई थिंग्स, जस्ट रिमेम्बर यू हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बींग इज ऑलवेज अ स्पिरिचुअल ह्यूमन, ये गुड ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज है जैसे आपके अंदर, उसके लिए मेडिटेशन एक जरिया है। मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है जो मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेट करती है। माना बहुत जितने भी संत हो गए उनके जीवन की ये कहानी है कि कुछ बच्चे फल को गिरा रहे थे, पत्थर मार रहे थे, तो आम गिरा रहे तो मारते मारते ऐसा हुआ कि उन्होंने एक पत्थर लगा नहीं, तो बाजू में एक व्यक्ति, सिंपल व्यक्ति बैठा हुआ था, उसको जाके लगा पत्थर। सन्यासी था, साधना कर रहा था वो, तो जैसे उसको पत्थर लगा तो उसकी आंखों से आंसू आना चालू हुए, तो बच्चों को बहुत बुरा लगा। बच्चे उसके पास गए तो उन्होंने उसे माफी मांगी कि हमको माफ करना, आपको बहुत दुख हो रहा है क्या, हमने आपको दुख दिया? तो बोलते नहीं बच्चों, मुझे पत्थर लगने का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि आपने इस पेड़ को पत्थर मारा, तो ये पेड़ तो वैसे मेरी तुलना में निर्जीव है, लेकिन वो आपको आम तो दे रहा है पत्थर मारने के बाद, लेकिन मैं जिंदा इंसान होते हुए भी मैं आपको कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, इस बात का मुझे दुख है।
बहुत बड़ा तप है
कि मेरे को दुख देने वाले का भी कल्याण हो। ये भावना आने में टाइम लगता है, बट दिस इज व्हाट पीपल ऑफ एसक्यू आर, दे आर अल्टीमेटली सो मच सेटिस्फाइड। ये हमने कहा ना अल्टीमेट इंटेलिजेंस है ये, इट यूटिलाइजेस। जो इमोशनल इंटेलिजेंट वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल भी करते हैं, राइट टाइम पर एक्सप्रेस भी करते हैं, ऐसे लोग भी काफी है, इनकी कमी नहीं है। दे आर वेरी गुड मैनेजर्स, दे आर लीडर्स और ग्रुप को मोटिवेट करते हैं। और मेरे पास कार है, मेरे पास एक स्टेटस है, लोग मेरे को जानते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अंदर से,
खालीपन महसूस हो रहा है।
खालीपन हो रहा है और वो खालीपन केवल इन एक्टिविटीज से ही दूर हो सकता है
जी।
कि जब आप किसी को मदद करते हो, अनकंडीशनल करना चाहिए मदद। नहीं तो क्या होता है कि मैं किसी कंपनी में हूं तो मैं सोचता हूं मैं मदद करूंगा, लेकिन रिटर्न में मेरे को क्या मिलेगा? वो मदद करके वहां रुकते नहीं, वो चले जाते हैं, क्योंकि मदद करने में ही सुख है। भगवद गीता का 2nd chapter 47 श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्य, है ना, तो मा फलेषु कदाचन, तो उसका मतलब यह है कि आप कर्म करते जाओ, फल आपके पास आना ही है। और हमने अनुभव किया है कि जब आप किसी को बिना किसी अपेक्षा के मदद करते हो, उसका जो सुख है
वो बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा है। मेरे पास एक आया था ऐसा बिजनेसमैन, कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरी मदद करो। मैंने कहा क्या मदद करो? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं खुशी नहीं है मेरी जिंदगी में। आप सोचो, मैंने उनको एक ही बात कही कि सर आपके पास जितना कुछ है ना, वो देख के ही मुझे खुशी मिलती है। तो मैंने उनको पूछा कि आपके पास इतना सब है तो आपने कभी किसी की मदद की है क्या? नहीं। तो बोला क्यों करने का, जरूरत ही नहीं पड़ा, सब मेरे इसमें है। तो मैंने कहा एक दिन काम करो कि आप ऐसे इलाके में, आपकी कार नहीं यूज करना, आप ऐसे इलाके में जाओ जहां आपको कोई जानता नहीं है, और वहां आप ऐसा कुछ करो जो आपने पहले कभी नहीं किया है, अनकंडीशनल आप मदद करो किसी के भी, और वहां पे मदद करने का रुकने का नहीं, उधर से निकल जाने का
जी।
और फिर उसने कुछ दिनों के बाद मुझे फोन किया, बहुत खुश था। मैंने कहा क्या हुआ इतना खुश? क्या बोलते, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुझे पता चला कि खुशी कैसे मिलती है।
छोटी छोटी एक्टिविटी हम करते हैं उसमें से हम इतना सारा खुशी हम ढूंढ सकते हैं, हमें मिल सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमको रोकती हैं, वो करने से भी हमको रोकती है। मतलब आपने इतनी सुंदर बात बताई, इतना सुंदर उदाहरण दिया आपने।
नहीं, पर उसने क्या किया वो सुनो, उसने क्या किया, वो एक इलाके में गया तो उसने देखा कुछ कबूतर थे, उसने कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसके दिमाग में कि कबूतरों को कुछ खाने को देना चाहिए। मैंने कहा मदद करना है, तो गया दुकान से वो बाजरा का दाना लाया और वो डालने लगा कबूतर को, कबूतर आने लगे और धीरे धीरे बहुत कबूतर आने लगे, और वो कहता है कि एक कबूतर तो मेरे हाथ के ऊपर आके बैठ गया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी पक्षी पहले कभी भी मेरे हाथ पर आके नहीं बैठा था।
तो मैंने खुशियां हैं।
हाँ, फिर वो आगे गया, बोलता है कि आगे एक गाय खड़ी थी और उसके बाजू में एक औरत बैठी थी जो घास के उसने ऐसे पैकेट बना के रखे थे और लोग उसको खिलाते थे, तो मैंने उससे खरीद के उस गाय को खिलाया, तो गाय खींच खींच के खा रही थी, फिर मैंने और लिया क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो देखा कि गाय को खिलाते समय मेरे को अच्छा लग रहा था अंदर
जी।
क्योंकि मैंने ऐसे किसी को खिलाया नहीं था, फिर वहां से आगे गया तो दो भिखारी बैठे हुए थे, बहुत बहुत दुखी थे और ऐसे लग रहा था कि कई दिनों से खाना नहीं खाया। तो मैंने लगा इनको मैं क्या दे सकता हूँ, तो हम तो मुंबई वाले हैं तो वहाँ वड़ा पाव बहुत मिलता है, तो मैंने वड़ा पाव खरीदी करके दोनों को दिए। लेकिन मुझे आपकी बात याद आई कि रुकना नहीं है मदद करने के बाद, तो मैं दिया उनको और मैं जो निकल रहा था लेकिन उनके चेहरे पे जो भाव देखा ना, वो आज भी मेरे को यहाँ पर अच्छा महसूस कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद, आज मुझे पता चला कि खुशी खुद खुश रहने में नहीं लेकिन दूसरों को सुखी बनाने में या मदद करने में बहुत खुशी है।
दूसरों के भाव भावनाएं जो हम चेहरे पे देखते हैं और उससे जो सुख मिलता है, सही बात है, वो सबसे बड़ा सुख है, उसे एक बहुत इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमको बहुत अच्छा लगता है वो जो थॉट है उसके साथ जो हम रिलैक्सेशन करते हैं, उसे बहुत मजा आता है।
अपने संपूर्ण शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे और ध्यान दो आंखों के बीच में लेके जाएंगे। बहुत काल का अभ्यास होने के कारण बहुत सहज ही मैं अपने आप को शरीर से अलग महसूस कर रहा हूँ। एक सुंदर दिव्य सितारा, शांत स्वरूप, ये शरीर भारी है पर मैं बिल्कुल हल्का हूँ। ये शरीर विनाशी है पर मैं अविनाशी हूँ। शांति के सागर, दया के सागर, प्यार के सागर, परमात्मा शिव बाबा की मैं संतान हूँ और उससे दिव्य शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। परमात्मा शिव बाबा से दिव्य ज्ञान गुण और शक्तियों से मैं भरपूर हो रही हूँ और आज मैं महसूस कर रही हूँ कि मनुष्य जीवन, इसका लक्ष्य स्वयं के साथ दूसरों को मदद करना भी है। जितना मैं परमात्मा की याद से भरपूर हो रही हूँ उतना मैं दूसरों को देते जा रही हूँ। आप दूसरों को मदद करते वक्त निस्वार्थ निष्काम भाव से मदद करने से जो खुशी मिलती है वो सर्वोच्च खुशी है, ये मैंने महसूस किया है। हर व्यक्ति इस समय किसी न किसी समस्या परेशानियों से दुखी है, अतृप्त इच्छाएं है जिसके वजह से दुखी है। मेरा काम है परमात्मा की संतान होने के कारण हर एक को मर्यादा में रहते हुए सुख देना। मैं दूसरों के दुखों को महसूस कर उनको ज्ञान गुण और शक्तियों का सहयोग दे रहा हूं, इससे वो आत्माएं भी वो व्यक्ति भी शक्तिशाली बनते जा रहे। परमात्मा शिव बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया। शिव बाबा आपने इतनी श्रेष्ठ समझ हमको दी कि हम भी आपकी तरह है इस पूरे विश्व में सुख शांति फैला रहे हैं, आपके प्रकंपन पूरे विश्व में फैल रहे हैं और आपके द्वारा प्राप्त ये ज्ञान गुण और शक्तियां संपूर्ण सृष्टि में फैला रहे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं किसी के काम आया, किसी की मदद कर सकता हूं। हर क्षण मेरे सामने ये अवसर है कि मैं किसी को भी मर्यादा में रहते हुए सुख दे सकता हूं। मैं संपूर्ण संतुष्ट हूं। दूसरों के दुखों से प्रभावित हुए बिना दूसरों को सुख और शक्तिशाली प्रकंपन में दे रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल शांत हूं और स्वस्थ हूं। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति।
आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये जानी, सिंपैथी और एम्पैथी, ये शब्द हमने कई बार सुने होंगे, लेकिन इसका मुख्य जो डिफरेंस है वो आज हमने जाना कि सिंपैथी में नो डाउट हम लोगों की भावनाओं में शामिल होते हैं, लेकिन एम्पैथी में हम वो फील करते हैं, सिर्फ दिमाग तक नहीं लेकिन दिल तक वो बात हमारे जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा बहुत सुंदर बात ये भी बताई कि किस तरह से हम अपना खुशी, अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमें एक सुख की सर्वोच्च प्राप्ति होती है। स्पिरिचुअलिटी को लेबल ना देते हुए हम उसके अंदर क्या अच्छाई है उसको हम ले, हमारे लिए जीवन में वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है उसके बारे में सोचे। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फोन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले कड़ी में हम नए सीक्रेट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।